मियां बीवी की नोकझोंक। आस्था को गिल्टी फील हुआ क्योंकि एंटीडोट के चक्कर में वो अपने परिवार को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही थी और अपने बेटे के साथ भी ठीक से समय नहीं बिता पा रही थी। अब आगे, अब आस्था ने इमोशनल होकर तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया। तब नानी माँ ने उसकी पीठ थपथपाई और हल्की सी हंसी दबाते हुए कोमलता से बोली, बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने पहले से सारी तैयारी कर ली है। अब अगर सारी बच्चियों का मन है तो हम कल शाम को ही गोद भराई का फंक्शन कर लेते हैं। बस तुम कोशिश करना सही वक्त पर वहां पहुंच सको, क्योंकि तुम्हारे वहां आने से सबको बहुत अच्छा लगेगा। नानी माँ के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर आस्था के चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे, क्योंकि उसे तो कल शाम को सम्राट की डाक विला में जाना था, और अब अगर वो कल शाम को फंक्शन में अटेंड करती है तो उसके बने बनाए प्लान का क्या होगा। कहीं न कहीं ये सब सोचते हुए आस्था का दिमाग का फ्यूज उड़ रहा था। फिलहाल आस्था ने सिचुएशन संभालने के लिए नानी माँ को मुस्कुराते हुए साफ शब्दों में जवाब दिया, नानी माँ हम पूरी कोशिश करेंगे रश्मि दीदी के फंक्शन में शामिल होने की, लेकिन नानी माँ हम अभी आपसे किसी तरह का कोई वादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कल अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं। ये सब कहते हुए आस्था बिल्कुल ही नॉर्मल लग रही थी। उसकी बातों से उसके मन में क्या चल रहा था इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल था। तभी नानी माँ आस्था को देखकर एकदम से बोली, लेकिन बेटा तुम शायद भूल रही हो, बच्चों के 6 दिन पूरे होने वाले हैं और उसके बाद बच्चों का नामकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम सोच रहे हैं कि बच्चों के नामकरण के साथ साथ रश्मि की गोद भराई की रस्म भी कल के दिन ही कर लेते हैं। और बेटा तुम्हें कल किसी भी कीमत पर इस फंक्शन में शामिल होना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे बिना सारे फंक्शन सारी खुशियां फीके फीके से लगेंगे। नानी माँ की बात सुनकर आस्था एक क्षण के लिए कहीं अटक सी गई थी, उसका सीना कस गया। इस वक्त वो दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। एक तरफ उसका परिवार था और एक तरफ उसका मकसद। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। मामले की गंभीरता को समझते हुए फिलहाल उसने गहरी सांस ली और नानी माँ का हौसला बढ़ाते हुए बोली, नानी माँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और कल के लिए फंक्शन की तैयारी शुरू कर दीजिए, और हाँ पंडित जी से नामकरण के लिए बात कर लीजिएगा, दादाजी और डैडी जी तो हैं ही आपके साथ, वो इस मामले में आपकी पूरी मदद करेंगे। इतना सुनकर नानी माँ ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने आस्था से कुछ नहीं कहा और वहाँ से सीधे हॉल में चली आईं, जहाँ पर दादाजी और अभिमान जी बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे से किसी विषय में बातचीत कर रहे थे। वहीं अभिमान जी को कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा खालीपन सा लगने लगा था। वसुंधरा को टॉर्चर करना, उसे काम करते हुए देखना, उसे बात बात परेशान करना उन्हें एक अलग ही लेवल का सुकून दिया करता था। वसुंधरा के जाने के बाद एक बार फिर से उनके जीवन में वही खालीपन, वही सूनापन लौट आया था। अब जैसे ही नानी माँ ने वहाँ आकर रश्मि की गोद भराई और साथ ही साथ बच्चों के नामकरण के बारे में दादाजी और अभिमान जी से डिस्कशन की, तो दादाजी ने तुरंत उनकी बातों में सहमति जताई और सादगी से जवाब दिया, बहन जी आपको जो भी ठीक लगे आप वही कीजिए, और हाँ आप जहाँ भी फंक्शन करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे घर की बहुओं के लिए आप ही फैसले लेती हैं, हमें पूरा यकीन है कि इस बार भी आप बच्चों के लिए जो तैयारी करेंगी सब कुछ अच्छा और बेहतर ही करेंगी। अब जैसे ही नानी माँ ने दादाजी के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो नानी माँ के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। दादाजी के अपनेपन से उनके बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि इस बात पर कहीं ना कहीं उन्हें अपना बेटा और बहू यानी कि मनोज जी और सीमा जी की याद आ गई थी, क्योंकि कितने ही दिनों सीमा जी और मनोज जी ने उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था, जिस वजह से वो कभी कभी दुखी हो जाती थी। हालांकि अभी भी सीमा जी के अंदर नानी को लेकर चिढ़ बनी हुई थी, वो नानी माँ को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, और जब से उनका घर नानी माँ के नाम पर हुआ था तब से उनके दिल में नानी माँ के लिए गहरी नफरत जम ले चुकी थी। फिलहाल दादाजी के शब्दों से नानी माँ के टेंशन भरे दिमाग को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में कहा, अभिमान बेटा चलो हम लोग पंडित जी से मिलकर आते हैं, और भाई साहब तब तक आप घर का ध्यान रखिएगा। ये सुनकर दादाजी ने केवल अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरमान की यादें जाने के बाद सबके दिलों में एक अधूरापन सा आ गया था। कोई खुलकर किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहा था और ना ही कोई अपनी प्रॉब्लम किसी को बता पा रहा था। वहीं अभिमान जी ने नानी माँ की इस बात पर हल्की स्माइल करते हुए बिल्कुल आराम से जवाब दिया, मैं तैयार होकर आता हूँ माँ, तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर अभिमान जी तैयार होने चले गए और दादाजी अंश के साथ खेलने लगे। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आहान अपने कमरे में मौजूद था और अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को गोद में लेकर बैठा हुआ था। वो लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। रौनक ने गुड़िया का नाम तय करने के बाद आहान को बताया, जिसे सुनकर आहान नामी सिर हिला दिया और अपनी बेटी को पुचकारते हुए बोला,
नहीं, मेरी गुड़िया का नाम एकदम यूनिक होगा, यू नो, ऐसा नाम होगा कि लोग उसका नाम एक बार लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। रौनक की उलझन भरी बातों को सुनकर रौनक ने अपनी हैरानी को दबाते हुए आहान पर सवाल दाग दिया, ये कैसी बातें कर रहे हो आहान, आखिरकार ऐसा कौन सा भयंकर नाम रखने वाले हो तुम मेरी गुड़िया का? फिर वो थोड़ा रुककर मासूमियत से बोली, वैसे भी वो मेरी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी का नाम बहुत ही प्यारा सा, एकदम छोटा सा और मासूम सा नाम रखूंगी। इस पर आहान ने नटखट अंदाज में रौनक का गाल पकड़कर खींचा, फिर एकदम से बोला, मैंने कहा ना, उसका नाम मैं अपनी तरफ से रखूंगा, तुम देखना मैं अपनी बच्ची का नाम ऐसा रखूंगा कि कोई भी उसका नाम आसानी से नहीं ले पाएगा। इस तरह की बातें करते करते उन दोनों के बीच एक बार फिर से तगड़ी बहस शुरू हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, देखते ही देखते उन दोनों के बीच महाभारत शुरू हो जाती है और उनकी लड़ाई की आवाजें एक बार फिर पूरे सिंघानिया मेंशन में गूंजने लगती है। जैसे ही मेंशन में इस तरह से लड़ाई झगड़े की आवाज गूंजने लगी, अब सब लोग एकदम से ठिठक गए। वही अभिमान जी और नानी माँ, जो कि पंडित जी से मिलने के लिए निकल ही रहे थे, वो अब इस तरह का शोर शराबा सुनकर चौंक गए। फौरन ही उनके कदम जहाँ थे वहीं पर जम से गए। दोनों ने अफसोस भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखा और अगले ही पल वो दोनों आहान और रौनक के कमरे की ओर बढ़ गए। वहीं इतनी जोर जोर की आवाजें सुनकर ध्रुव, आकाश, सुमित, अविनाशी नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर भी तुरंत वहां आकर जमा हो गया था और वो सभी परेशान होकर सोचने लगे कि आखिरकार सिंघानिया मेंशन में ये कैसा भूकंप आ गया है और आहान और रौनक के कमरे से ये लड़ाई झगड़े की आवाजें क्यों आ रही है, अचानक से इन दोनों के बीच किस बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है। तभी ध्रुव ने अचानक हंसकर कहा, लगता है ये लड़का आज फिर रौनक से पिटने वाला है, क्या करें यार, अब हम कैसे अपने दोस्त को पिटने से बचाएं। वहीं वंशिका आंखों में शरारत लिए ध्रुव के कानों में धीरे से फुसफुसाई, वैसे ध्रुव कितने दिन हो गए हैं अभी तक हमारे बीच ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई है ना। अब जैसे ही ध्रुव ने वंशिका के मुंह से ये बात सुनी, अचानक ध्रुव ने तुरंत वंशिका की कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसकी तरफ घूरते हुए बोला, तुम कहो तो हम बेडरूम में जाकर कोई दूसरी वाली लड़ाई कर सकते हैं।
ये कहते हुए अचानक धुवरे के होठों पर एक शरारती स्माइल खेलने लगी थी। वो दोनों सबसे पीछे खड़े हुए थी इसलिए उन्हें कोई भी देख नहीं पा रहा था। तब तक रश्मि भी आस्था के साथ वहां आ गई थी। उनके चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। रश्मि के माथे पर परेशानी की लकीरें उभर आईं और वो जल्दी से बोली, कहीं रौनक फिर से तो घर छोड़कर जाने की जिद तो नहीं कर रही है, हमें वहां चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है। अब देर न करते हुए सब लोग एक एक करके आहान के रूम में जमा होने लगे थे। वहीं अरमान, जो कि जिम से वापस आ चुका था, जैसे ही उसके कानों में भी इस तरह की लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो वो एकदम से चौंक लिया, क्योंकि जब से उसकी यादें गई थीं उसने सिंघानिया मेंशन में इस तरह का कोई शोरगुल नहीं सुना था। और वैसे भी पहले से ही सिंघानिया मेंशन एक तरह का डाक विला हुआ करता था। वहां पर कभी कभार सिर्फ चम्मच वगैरह की हल्की खनकने की आवाज़ सुनाई देती थी, वरना किसी भी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं होती थी और वहां हमेशा सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। अपनी इरिटेशन को कंट्रोल करते हुए अरमान भी बाकी सब लोगों के पीछे पीछे चल दिया। अब जैसे ही वो उन्होंने सामने का नज़ारा देखा, वैसे ही सब लोग की आंखें हैरत से चौड़ी हो गईं और उनका दिमाग तेज़ी से घूमने लगा। वो सब हैरानी से पूरी तरह बेहाल हो चुके थे। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि सामने आहान ने बच्ची को एक तरफ से पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ रौनक ने भी बच्ची को पकड़ा हुआ था और दोनों उस बच्ची को अपनी अपनी तरफ खींचते हुए झगड़ रहे थे। आहान कह रहा था, नहीं, मैंने जो कहा है वही होगा। दूसरी तरफ रौनक भी बच्चे को खींचते हुए कह रही थी, नो, नेवर, मैंने कहा ना, ये नहीं होगा मतलब नहीं होगा। उन दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए देखकर आस्था पूरी तरह से घबरा गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और लगभग चीखते हुए बोली, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये क्या बचपना है। इतना कहकर आस्था ने आगे बढ़कर तुरंत उस नन्ही सी प्रिंसेस यानी आहान की बेटी को अपनी बाहों में भर लिया था। उस वक्त उसका चेहरा चिंता से तमतमाया हुआ था और वो आहान और रौनक को ऐसे घूर रही थी जैसे उन्हें कच्चा ही चबा जाएगी। आस्था ने धीमी मगर नाराजगी भरी आवाज में उनसे कहा, तुम दोनों इस तरह का बचपना कैसे कर सकते हो? अगर तुम दोनों के इस झगड़े में बच्चे को कुछ हो जाता तो, अगर उसे चोट लग जाती तो, तुम दोनों इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? ये एकदम इमेच्योर बिहेवियर है। वहीं नानी नाने भी झल्लाहट में अपना माथा पीट लिया। वो काफी बेचैन हो रही थी, उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उन्हें आहान और रौनक के इस बचपने पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो झुंझला गईं। बेटा, तुम दोनों अब माँ बाप बन चुके हो, अब तुम्हारे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी है। तुम दोनों इस तरह बच्चे के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? वो कोई खेलने की चीज नहीं है। रश्मि ने भी नानी माँ की बातों पर सहमति जताई और वो रौनक को फटकारते हुए बोली, रौनक, मैं समझती हूँ कि चलो आहान में बचपना है, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो एक बच्चे की माँ हो ना, तुमने अभी अभी उसे कुछ दिन पहले जन्म दिया है और तुम दोनों उस नन्ही सी बच्चे को पकड़कर एक दूसरे की तरफ कैसे खींच सकते हो? तुम दोनों इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? रश्मि की तीखी बातें सुनकर रौनक को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, इसलिए अचानक वो पूरी तरह से रोने लगी। वहीं आहान भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी रोना शुरू कर चुका था। अब उन दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर बाकी सब लोग और ज्यादा इरिटेट होने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। कोई कुछ बोलने के मूड में नहीं लग रहा था। वहीं अरमान, जो सबसे पीछे लास्ट में खड़ा हुआ था, वो क्षण भर के लिए दंग रह गया और हैरान होते हुए ये सारी नौटंकी देख रहा था। और कहीं ना कहीं वो नाखुश होते हुए यही सोच रहा था कि आखिरकार सिंघानिया मेंशन को हो क्या रहा है, ये यहाँ कैसा अजीब सा ड्रामा चल रहा है। फिलहाल नानी माँ आहान और रौनक को शांत कराते हुए कहती हैं, बेटा शांत हो जाओ, तुम दोनों को इस तरह से रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बस तुम दोनों को यही समझा रहे थे कि तुम दोनों को अब इतनी लापरवाही से एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरह से खींचातानी नहीं करनी चाहिए। नानी माँ की आवाज़ में चिंता सुनकर आहान ने जल्दी से अपने कान पकड़ते हुए माफ़ी मांगी और रौनक की शिकायत करते हुए बोला, इस हरकत के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए नानी माँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी का नाम मैं ऐसा रखूंगी कि कोई भी उसका नाम लेने से पहले 100 बार सोचेगा। इसलिए मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा थोड़ा खतरनाक नाम सोच रहा था, लेकिन ये हवा हवाई कह रही है कि ये इसका छोटा सा प्यारा सा नाम रखेगी जिसे हर कोई आसानी से उसका नाम ले पाएगा। अब आप ही बताइए नानी माँ, आहान सिंघानिया की बेटी का नाम इतना साधारण और सिंपल कैसे हो सकता है। इतना कहकर आहान ने तुरंत इमोशनल होने का नाटक किया और नानी माँ के गले लगकर रोने लगा। वहीं सबकी आंखें आहान की बात सुनकर हैरानी से फैल गई थीं। उन्होंने आहान और रौनक की ओर शौक से देखा, फिर अचानक सभी ने एक साथ अपने माथे पर हाथ मार लिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका बीपी हाई हो रहा है। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात को लेकर ये दोनों नमूने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे और एक दूसरे से बहसबाजी करते हुए इतनी बड़ी लापरवाही कर देंगे।